पिछले क्लास में हमने क्या सुना था? हरिदास ठाकुर की,
हरिदास ठाकुर चांदपुर आ गए और बलराम आचार्य के घर पे, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार घर पे गए सभा।
तो वहाँ क्या शिक्षा मिली? वैष्णव अपराध का जो फल है, हरिदास ठाकुर अपनी निंदा को सहन कर लेते हैं, कोई शब्द नहीं बोलते वो उलट कर। और
सनातन रघुनाथ
दास गोस्वामी ने उनकी सेवा की थी, जिसका फल से वो चैतन्य के चरण उनको प्राप्त हुए। और हरि नाम एक महत्वपूर्ण अंग बना देना चाहिए। और माया देवी, एक तो पहले वेश्याएं आई थी लेकिन इस बार तो माया देवी साक्षात आई थी, और वो दीक्षित थी माया देवी, इस बात को नोट करना पड़ेगा। हाँ, तो शास्त्र कहते हैं कि वैष्णवी माया, तो माया देवी का साक्षात स्वरूप क्या है? श्री है। तो ये दीक्षित डिवोटी थी माता जी, कौन? माया देवी। तिलक वगैरह लगा के, हाथ में बड़ी बैग लेके पूरा। हाँ, किन से दीक्षित थी? शिव जी से दीक्षित थी, राम मंत्र उन्होंने लिया था। तो माया देवी इस रूप में भी आ सकती है। माया देवी ऐसी नहीं है कि वो बाहर के किसी और रूप में आ सकती है, लेकिन डिवोटी फॉर्म में आ सकती है। वैष्णवी माया, ये तो ज्यादा खतरनाक होती है। तो भक्त भक्त इस फॉर्म से तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे हमें नहीं समझना चाहिए। तो इस चीज से हम सीखते हैं कि ये जो माया देवी है वो उस डिवोटी के माताजी भक्त के रूप में आई थी, जो ऑलरेडी हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, दीक्षित थे। तो हरिदास ठाकुर लेकिन फिर भी विचलित नहीं हुए। हरिदास ठाकुर अपने हरि नाम का जो उन्होंने व्रत ले रखा था उसमें फिक्स थे। तो इस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं कितनी सारी शिक्षाएं हरिदास ठाकुर के जीवन से हमें मिलती है, क्योंकि हरिदास ठाकुर का जीवन तो हरि नाम के प्रति सराउंडेड था, हरि नाम के प्रति केंद्रित था उनका जो जीवन है। तो हरिदास ठाकुर ऐसे महान वैष्णव हुए हैं, और प्रभुपाद ने हमारे जीवन में हरिदास ठाकुर को डाला है, डेली हमारे कार्यक्रमों में हरिदास का हम गुणगान करते हैं, आरती के बाद और क्लास से पहले। जैसे कोई क्लास शुरू होती है भागवतम राधा माधव के बाद जय ओम विष्णुपाद नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, और फिर जब आरती वगैरह खत्म होती है तो उस समय भी हम हरिदास ठाकुर को हरिदास ठाकुर के याद करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, उनकी जय ध्वनि देते हैं। तो ये हरिदास ठाकुर जो शुद्ध भक्ति के एक विग्रह थे हरिदास ठाकुर। और क्या था इनमें? ये तीनों गुण हरिदास ठाकुर में बहुत अधिक मात्रा में थे, जिनको हमने चर्चा की थी, नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, ये तीनों चीजों से। तो हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी वास्तव में कहते हैं कि आप कुछ लोग केवल आचार करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते, लेकिन आप कैसे हो? करह द्वि कार्य, आप तो दोनों कार्य करते हो, आचार प्रचार करह द्वि कार्य, तुम्ही सर्व, तुम आप सारे जगत तेरे गुरु। इसलिए हरिदास ठाकुर को जगत गुरु कहा गया था, वो नामाचार्य हैं। तो हरिदास ठाकुर का जीवन इस प्रकार से है, ऐसे नहीं कि कई बार हम भागते हैं कि अभी चलो अभी हम आते भक्त बनने के लिए, कहते अभी मैं निकलता भक्त बनाने के लिए, लेकिन कई बार ऐसे होता है भक्त बनाने के चक्कर में खुद नहीं भक्त बनता। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आचार प्रचार करह दुई कार्य, दोनों ही करना चाहिए। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करे। पहले क्या बोला है? जन्म सार्थक करे। तो जन्म सार्थक करने का मतलब है स्वयं ही कृष्ण भावना को हम ले, ग्रहण करें सीरियसली, ऑब्जर्व हो और दे फिर। तो साथ साथ प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि ये नहीं कि अभी मैं खुद भक्त बन जाता जाके वृंदावन में रहता फिर जाता हूँ, नहीं। तो कृष्ण भावना ऐसी है कि साथ साथ आप देते हुए भी उन्नति कर सकते हो। तो लेकिन फिर भी सावधान होना चाहिए कि हम भक्त बनने आए हैं और हम भागते रहेंगे कि अभी भक्त बनाता हूँ, तो फिर लॉस्ट हो जाते कई बार भक्त लोग, खुद भी नहीं बनते और भक्त भी नहीं बना पाते। तो हरिदास ठाकुर का जीवन हरिनाम के प्रति समर्पित था और वो महान वैष्णव थे। तो वैष्णव उपाधि बहुत बड़ी है ना, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कौन है? वैष्णव है। तो ऐसे नहीं कि कई बार हम अपने आप को समझ लेते हैं कि अभी हरिनाम कर रहा हूँ, सीखा रखा है, धोती कुर्ता डाला है और थोड़ा सा अध्ययन करता हूँ, प्रवचन देता हूँ, मैं वैष्णव बन गया। कई बार एक्चुअली मंदिर के अंदर आ जाने के बाद लगता है डिवोटी तो बन गया मैं, अभी भक्त तो बन गया, भक्त बना हूँ। कोई पूछा मैं इस्कॉन में भक्त बन गया हूँ, कोई फोन आता है आपको कहा हो इस्कॉन में भक्त बन गया हूँ, लेकिन अभी तो आपने एंट्री की है। हम सब क्या है? बीमार व्यक्ति है सारे भौतिक रूप से। तो हॉस्पिटल में एंट्री करते तो वो लंबा समय लगता है, ट्रीटमेंट बहुत लंबी है। जब तक कृष्ण प्रेम उदित नहीं होगा तब तक ट्रीटमेंट चलती रहेगी। तो ये तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें भक्त बन गया, और हमें टाइटल भी लगता है भक्त दीपक या भक्त समथिंग समथिंग, हाँ तो आगे टाइटल भी लगता है, पीछे भी दास का टाइटल लगता है। तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए हमें, हम भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि आप तो ग्रेटेस्ट वैष्णवा हो। तो प्रभुपाद ने कहा वैष्णवा जो वैष्णव है वो स्पेशल पर्सनालिटी है, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ भक्त बनने का या वैष्णव बनने का, मैं अभी वैष्णव नहीं बना हूँ। इस प्रकार से जो महान वैष्णव है वो भी अपने आचरण से इस प्रकार की शिक्षा देते हैं और विनम्रता का आचरण करते हैं। जैसे इंग्लिश में वर्णन आता है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आता है ना ऐसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो उस श्लोक में कौन सी चीज सबसे पहली है? तृणादपि सुनिश्चन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मीन्स तृणादपि, विनम्रता सबसे पहले लेनी चाहिए हमें और वो हमारे जीवन में धारण करनी चाहिए। तो ये जो आचार्य है इस विनम्रता के महान प्रतीक है, श्रील हरिदास ठाकुर। और भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे कि ये जो तृणादपि सुनिचैन है वो श्लोक को क्या करो, अपने गले में लॉकेट बना के पहनो। मतलब ऐसे नहीं कि कागज के ऊपर लिख के आप पहनोगे या फिर नहीं, वो अपने गुणों से प्रकट होना चाहिए। उस श्लोक में जो गुणों का वर्णन किया है वो हमारे आचरण में भी प्रकट हो जाने चाहिए। इस प्रकार से जो वैष्णव हैं वो बहुत अधिक विनम्र हैं और हरिदास ठाकुर की जो विनम्रता की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो इतने विनम्र थे और चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से इस विनम्रता की शिक्षा प्रदान करते हैं। आपनी आचरी भक्ति सिखायो सबारे। तो महाप्रभु जब भाव वेश में आकर नृत्य करते थे तो चैतन्य महाप्रभु को कहते थे कि आपके हृदय में तो कृष्ण के लिए बहुत अधिक भाव है। तो महाप्रभु कहते थे कि मेरे हृदय में कोई प्रेम होता कृष्ण के लिए तो मैं इस भौतिक जगत में नहीं होता, मैं आध्यात्मिक जगत में होता। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो विनम्रता की मूर्ति है तो उनके जो भी भक्त हैं वो भी उसी प्रकार से हैं। चाहे महाप्रभु के भक्तों की आप लिस्ट देखो तो एक गुण आपको प्रमुखता से उनके जीवन में देखने को मिलेगा या पहचानने को मिलेगा। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का जो जीवन है जैसे हमने कुछ चर्चाएं की थी पीछे कि भगवान के नाम के प्रति केंद्रित है और भगवान के महान सेवक हैं चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि सारा जो प्रयास हम करते हैं सुबह से शाम तक या कई साल बिताते हैं शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, ये चीज किस लिए करते हैं? कृष्ण प्रेम को उदित करने के लिए या इस भावना को जगाने के लिए कि मैं कृष्ण दास हूँ, कृष्ण कृष्णदास बिंदास मायादास उदास तो कृष्णदास बनना ही हमारा ये है गोल होना चाहिए। कृष्णदास मीन्स कृष्ण के दासों का दास, डायरेक्ट तो कृष्णदास नहीं बन सकते तो भक्ति सिद्धांत महाराज का एक गुण था कि उनको कोई मिलने आता था तो पूछते थे हु आर यू, तो कहता था मैं कृष्ण सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तो वो कहते थे ये लो थोड़ा सा प्रसाद, मैं बहुत बिजी हूँ आज और मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत सेवा में हूँ, मैं अभी नहीं मिल सकता आपको, आगे कभी मिलूंगा। तो फिर कोई दूसरे व्यक्ति आते थे तो कहते यही पर पूछते थे वो आ रही हूँ, तो कहते कृष्ण के सेवकों का सेवक, वो कहते मैं आज पूरे दिन फ्री हूँ और उनको कहते आप पूरे दिन मेरे साथ बैठो और हम कृष्ण कथा करेंगे और कृष्ण के नामों का उच्चारण करेंगे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत चतुर थे, तो ये सिखाना चाहते थे कि भगवान के सेवकों का सेवक, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानु दास, गोपियों के जो भरता है, भरता मीन्स जो पालक है, ओनर है या फिर जो पालन करने वाले हैं, वो कौन है? कृष्ण है, उनके चरण कमलों के दासों का दासों का दासों का दास। तो ये भावना हरिदास ठाकुर में पाया जाती है उनके जीवन चरित्र से, और जितने भी चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे उनमें भी इस बात को हम देखते हैं। और आपने सुना कि किस प्रकार से वो वेश्या रामचंद्र खान ने भी भेजी थी और फिर माया देवी भी गई थी, तो रामचंद्र खान ने भगवद गीता नहीं पढ़ी थी, क्योंकि भगवद गीता में श्लोक आता है परम दृष्टवा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देन रसवर्ज रसोपेश परम दृष्टवा निवर्तते, कि जिसको हायर टेस्ट मिली है वो लोअर टेस्ट के प्रति भागेगा नहीं। तो भगवद गीता में ये श्लोक भगवान ने दिया है। तो हरिदास ठाकुर का टेस्ट किस चीज के प्रति था? हरे नाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति उनका टेस्ट था। और ये हरे नाम कलियुगा में चैतन्य महाप्रभु ने इतना अद्भुत रूप से दिया है और ये दवाई है, और ऐसे नहीं कि आपको दवाई के इंजेक्शन लेना पड़ रहा है इस हरे नाम का इंजेक्शन, नहीं ये पिल से टैबलेट है, मुंह में डालो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो लेकिन ये मुंह में डालने के लिए भी हम बहुत कष्ट में रहते हैं, आतुरता नहीं है, जैसे फिर कई बार बच्चे नहीं खाते दवाइयाँ, बचपन में आपने देखा होगा, तो लेकिन कई बार माता पिता उसके हाथ पांव पकड़ के मुंह खोल देते और डाल देते और पानी पिला देते हैं फिर चला जाता है। तो उसी प्रकार से गुरु और जो हमारे आश्रम इंचार्ज हैं वो हमारे साथ ऐसा करते हैं वो भगाते हैं भक्तों को, ऊपर अटेंडेंस लगाओ वहां बैठ के जप करो, ये सब क्या है? माता पिता के समान है, क्योंकि ये जो दवाई है जो टैबलेट है हरे नाम की टैबलेट हम लेना नहीं चाहते। और कितने टैबलेट्स लेनी पड़ती है हमें? 16, मतलब 16 राउंड तो करते हैं 17,000 समथिंग, कितना 1728 समथिंग ऐसे नाम हम लेते हैं भगवत नाम, तो इतने टैबलेट्स लेनी पड़ती है रोज, तो देखो कितनी बड़ा बीमारी होगी। तो ये टैबलेट बहुत ही स्वीट है और हर वैष्णव ने इसका आस्वादन किया है, तो हर नामाचार्य हरिदास ठाकुर तो बहुत अधिक टैबलेट वो खाते थे और कितनी स्वीट है, जैसे वो होम्योपैथिक की दवाइयाँ होती है छोटी छोटी वो स्वीट होती है, वो खाते रहते कई बार, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो जितनी टैबलेट से वो डालते कई बार लोग स्वीट, तो ये हरे नाम भी स्वीट है लेकिन इसका स्वीटनेस हमें महसूस नहीं हो रहा है। तो इसका स्वीटनेस महसूस होगा जब हम भगवान के भक्तों के संग में हरे नाम का उच्चारण करेंगे नियमित रूप से। तो ये हरिदास ठाकुर का जीवन जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका हमें गुणगान करते रहना चाहिए, उनके बारे में सुनते रहना चाहिए, उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सबसे ज्यादा किसको गुणगान किया होगा तो वह हरिदास ठाकुर थे। तो महाप्रभु कहते थे जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, बोलिए
जय हरिदास, जय जय हरिदास।
तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उनको ऐसा कहते थे, अब सारे भक्त उनके पीछे बोलते जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, क्योंकि हरिदास ठाकुर का जो नाम लेता है महाप्रभु का वो प्रिय हो जाता है, सबसे प्रिय। तो महा हरिदास ठाकुर बहुत अधिक प्रिय थे। हाँ, महाप्रभु कहा करते थे कि आपके प्रति जो प्रेम करता है वो वास्तव में मेरे प्रति प्रेम कर रहा है। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का जो नाम भी है, हरिदास ठाकुर के नाम में हरि का नाम है ना, भगवान का नाम, तो हरि के जो दास है। तो ये हरिदास ठाकुर बहुत ही अद्भुत वैष्णव रहे, उनके जीवन चरित्र भी। तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे उनके चरित्र को। तो हम कहाँ थे, पुलिया ग्राम आए थे, हाँ, जहाँ माया देवी फिर अद्वैताचार्य का वहाँ उन्होंने श्राद्ध पात्र को स्वीकार किया था। हाँ, भूलिए मत, स्मरण करिए हाँ उसको, क्योंकि ऐसे भक्तों का चरित्र का हम स्मरण करते हैं तो कृष्ण हमारे लिए बहुत अधिक सरल हो जाते हैं हमारे जीवन में। तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि हरिदास ठाकुर फुलिया ग्राम में रहते थे और जब माया देवी ने उनकी उस प्रकार से परीक्षा की और उन्होंने कहा आप मुझे अपना शिष्य बना लो, क्योंकि मैंने शिवजी से तो राम नाम की दीक्षा ली है लेकिन अभी मुझे कृष्ण नाम की, हरे कृष्ण महामंत्र चाहिए। तो वो उनको दीक्षित करते हैं, माया देवी प्रेम मांगे इथे के विस्मय, क्या आश्चर्य है, माया देवी आके उनसे प्रेम मांग रही है, इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर थे जो निरवधि हरिदास गंगा तीरे तीरे भ्रमेण कौतुके कृष्ण बलि उच्च स्वरे। इनका जीवन ऐसा था अकेले घूमते रहते थे, किसी चीज से डर नहीं है, जीवन में कितनी विपदाएं आ जाए कुछ भी हो जाए, ना रहने की चिंता है, ना खाने की चिंता, ना मेडिसिन की चिंता, ना कपड़े धोने की चिंता, ना पेट साफ करने की चिंता। अब ब्रह्मचारी जीवन में हम देखते पूरे दिन में कई चिंताएं लगी रहती है। सोना भी है फिर कपड़े भी धोने हैं, सबसे सबसे तपस्या क्या है, कपड़े धोना ब्रह्मचारी जीवन में। वो कपड़े धोने का चिंता करता रहता है, कई बार दो दो दिन वैसे पड़े रखता है, भक्त होता है एक साथ धो लूंगा। हाँ, पेट साफ करना है, कितनी चीजें हैं, फिर हृदय भी साफ करना है। तो हरिदास ठाकुर का जीवन बिल्कुल बहता पानी रमता योगी, पानी जैसे बहता है वैसे वो बिल्कुल मस्त रहते थे। गंगा नदी के, गंगा का आश्रय उन्होंने ग्रहण किया था, गंगा नदी के किनारे अपना कुटिया बना के रहते थे और गंगा नदी के किनारे हरि नाम का कीर्तन करते रहते थे, घूमते थे, जो भी मिले उसको प्रचार करते रहते थे, हरि नाम देते थे और गाते रहते थे उच्च स्वरें। हरिदास ठाकुर जोर जोर से, अभी देखो अकेले गा रहे हैं, हम तो हमें मृदंग चाहिए, करताल चाहिए, माइक चाहिए, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, अकेले हरे नाम करते थे और सारे लोगों को, फुलिया ग्राम के जो ब्राह्मण थे लोग थे उनसे प्रभावित हो गए थे और उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। विषय सुखेते विरक्तेर अग्रगण्य कृष्ण नामे परिपूर्ण शिवदन धन्य। तो विषयों के प्रति, विषय भोग के प्रति क्या थे, विरक्त थे, बिल्कुल ही विरक्त, विषय भोगों के प्रति उनका कोई लालसा नहीं था, लेकिन उनके मुंह में क्या भरा रहता था, श्री वदन धन्य, उनका वदन मुंह धन्य हो गया था, क्योंकि कृष्ण नामे परिपूर्ण, कृष्ण के नाम से उनका जो मुख है वो परिपूर्ण भरा हुआ रहता था। प्रसाद के समय हमारा मुंह भरा रहता है और जब गुलाब जामुन डालते तो और भर जाता है। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं, महाप्रभु क्या कहते थे, बलह वदने चैतन्य महामुकुंद माधव यादव हरि, बोले रे बोलो रे, वदन भरी वदन भरी, कैसे बोलो, मुंह भर भर के बोलो, मतलब हरे नाम लेते तो ऐसे भर जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल अभी जैसे किसी को जैसे गाड़ी होती है ना, धक्का लगाओ तब स्टार्ट होती है, तो ऐसा नहीं कि हमें कोई धक्का लगा दे फिर पुश करे तभी मुंह से हरे नाम निकल रहा है, ऐसे नहीं। तो वदन भर भर के बोलना चाहिए, क्योंकि यही मुख जो अभी अच्छा स्थिति में है। तो मृत्यु के समय ये चांद नहीं कर पाएगा, और जब मरेगा व्यक्ति तो भी चांद नहीं कर पाएगा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि पिता की जब मृत्यु होती है तो उसको स्मशान में लेटाया जाता है, और जिस पुत्र को पिता पूरे जीवन अपने गोद में लेके खिलाता है फिलाता है घुमाता है, वही पुत्र हाथ में आग लेता है और मुंह में डाल देता है मृत्यु के समय। कहाँ आग लगाते, मुंह की ओर लगाते, फेस की ओर। तो कहते उस समय हरिनाम नहीं निकलेगा। हाँ, वो कहते अभी अभी ये मुंह बड़ा ठीक ठाक है, सब कुछ बोल रहा है, तो अधिक से अधिक वदन भर भर के हरिनाम लो। तो ये हरिदास ठाकुर बहुत उच्च स्वर से कीर्तन करते थे और पूरी तरह से रममान थे हरिनाम में। तो वहां के जो काजी थे उनको पता चला कि ये क्या कर रहा है, सबको बिगाड़ रहा है, हरिनाम ले लेकर सब हमारे जो मुस्लिम है उनको दूषित कर रहा है, उनको प्रचार कर रहा है। तो वहां का काजी को बहुत गुस्सा आता है, और वो जो यवन काजी है वो सोचता है, और जो मुलुकपति में जो बड़ा और कोई लीडर हो ना या राजा हो उस एरिया का, उनको जाके कंप्लेंट करता है इस हरिदास ठाकुर की, और कहता है यवन हैया करे हिंदुर आचार, भालमते नारे आनी करह विचार। के यवन होकर एक किसका आचरण कर रहा है, हिंदुओं का आचरण कर रहा है, हिंदू बन रहा है, इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। जैसे कोई भक्त कुछ करता है तो भक्त इस बात पे विचार करना चाहिए, कोर्ट में कहा जाता है, तो वैसे ही बोला। तो फिर के तुरंत कहा कि उस हरिदास ठाकुर को पकड़ के ले आओ, उस मुलुकपति या जो भी राजा था। तो हरिदास ठाकुर को ले आते हैं, तो हरिदास ठाकुर तो अभय, उनके हृदय में कोई भय नहीं था। जिन्होंने अभय चरण की शरण ले रखी थी, अभय चरण कौन है, कृष्ण है, जिनके चरण अभय प्रदान करने वाले हैं। भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे, कि जिनके चरण भयभीत व्यक्ति को अभय प्रदान करते हैं, तो ऐसे चरणों की उन्होंने शरण ग्रहण की थी। क्योंकि जो भय है वो भी भयभीत होता है, किससे भयभीत होता है, भगवान से भयभीत होता है। यद भी भेति स्वयं भयम, सुत गोस्वामी कहते भागवतम में कि यन्नाम इव शोग्रणन, आपका नाम कोई लेखता है, हाँ आपका नाम इतना शक्तिशाली है कि जो साक्षात भय है वो भी कांपने लगता है, डर जाता है, भयभीत होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने तो हरि नाम की शरण ग्रहण किए थे, तो वो काल से भी नहीं डरते थे, तो फिर यवन उस राजा से डरने का प्रश्न ही नहीं। जैसे उनको ले गए तो उनके मुख में हर समय कहता है, उनके मुख में हर समय हरि नाम निकलते रहता था, और जैसे राजा के सामने गए तो भी चांट कर रहे थे। तो सबसे पहले उनको जेल में डाला गया, और जेल में डालते ही वहां जो कैदी थे उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी जेल में थे, और कुछ साधु प्रवृत्ति के लोग भी जेल में थे। तो वो सब ने देखा कि उनको पता चला कि हरिदास ठाकुर जेल में आने वाले हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर बहुत फेमस हो गए थे अपने भक्ति और एक कीर्तन की विधि के द्वारा। तो सारे वो जो कैदी हैं वो सोचने लगे, परम वैष्णव हरिदास महाशय, ताते देखी बंदी दुख है बेकक्षाय। तो जैसे हरिदास ठाकुर को जेल में डाला तो जितने भी कैदी थे बंदी थे वो उनको लगा कि अभी हमारा दुख खत्म हो गया, देखने मात्र से उनका दुख खत्म हो गया। तो हरिदास ठाकुर उन सब कैदियों को देखते हैं और अपनी कृपा कटाक्ष मर्सीफुल ग्लांस उनके ऊपर डालते हैं और वो सारे कैदी हरिदास ठाकुर को देखने मात्र से दंडवत प्रणाम करते हैं हरिदास ठाकुर को, क्योंकि जानते थे उनके प्रभाव को, जानते थे उनके भगवान के प्रति शरणागति को, भक्ति को वो जानते थे। तो वो सब लोग उनको प्रणाम करते हैं और हरिदास ठाकुर के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि जेल में जब पहुंचे तो वो कैसे दिख रहे थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अजानुलंबित भुजा कमल नयन, उनकी भुजाएं कितनी लंबी थी, घुटनों तक थी, अजानु अजानु बाहु, चैतन्य महाप्रभु के भी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। ये महापुरुष का लक्षण है, कई लक्षण होते हैं उनमें से एक लक्षण है। तो जो हरिदास ठाकुर हैं वो जाते ही इस प्रकार के दिव्य शरीर को देखा उन सब कैदियों ने कि उनका अजानु बाहु है और उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं, कमल सदृश हैं, सर्व मनोहर मुख चंद्र अनुपम, और उनका जो रूप है बहुत ही मनोहर सुंदर और मुख कमल चंद्रमा के समान सुशोभित था। तो इस प्रकार से चंद्रमा की उपमा दी जाती है किसी भी चीज को। आपका मुख तो चांद के समान है, भौतिक जगत में जब कोई प्रेमी और प्रेमिका वर्णन करता है तो उसको क्या कहते हैं, चंद्रमा के समान आपका जो मुख है। तो भौतिक जगत में व्यक्ति किसी का वर्णन करता है या किसी की प्रशंसा करता है, किसी की सेवा करता है तो एक विशेष प्रकार का रस मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, अनुभव है सेवा करने का भौतिक जगत में सर्व करते, चाहे अपने इंद्रियों को करो या पेरेंट्स को करो या भौतिक किसी भी चीजों को, तो उसको सर्व करने से, उसकी प्रशंसा करने से एक आनंद मिलता है। तो वैसे ही है स्त्री पुरुष का जो संबंध है भौतिक जगत में। तो जब मैरिज से पहले तो उसका मुख उसको चांद मुख महसूस होता है, चंद्रमा के समान मुख शीतल, और जैसे मैरिज हो जाता है सूरज मुखी हो जाता है सूरज हाँ, और फिर आखिरी में ज्वालामुखी हाँ, तो ये सिक्वेंस है। क्योंकि भौतिक जगत का जो रस हमें मिलता है किसी चीज को सर्व करने से, वो शुरुआत में मीठा होता है, कुछ दिनों के बाद खट्टा हो जाता है। मैं अभी रात है तो कह रहे थे कि आजकल पूरे वर्ल्ड में स्पेशली विदेशों में मैरिज 3 साल के बाद ही तलाक होता है, 80% जो मैरिजेस है वो 3 साल के बाद तलाक होता है। तो ये क्या सिखाता है हमें कि भौतिक जगत का जो प्रेम है या भौतिक जगत का जो रस है वो निरस हो जाता है कितने दिनों में, कुछ ही समय के बाद हाँ। लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो रस है वो क्या होता है और बढ़ता है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम वर्धनम, वर्धित होता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। बहुत ही देर से आप मौसमी का रस आप निकाल के रखो, 5 मिनट रखो, बहुत खट्टा हो जाएगा। या फिर दूसरा क्या होता है, रेड कलर का अनार का जूस कड़वा हो जाता है। तो ये सब भौतिक जगत के रसों की तुलना की गई है। लेकिन आध्यात्मिक रस क्या है, हाँ ये कृष्ण भावना का रस ऐसा है कि इसमें सब प्रकार के टेस्ट एक ही साथ मिक्स है। तो इस रस को पीने के लिए लालायित होना चाहिए। इसलिए जहां भी कृष्ण कथा की बात आती है, भगवान के बारे में सुनने की बात आती है, तो सारे वैष्णवगण इस शब्द को यूज करते हैं, कृष्ण रसायन, कृष्ण रसायन। और रूप गोस्वामी ने भी एक ग्रंथ लिख दिया, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस जो अमृत के समान है। अमृत मीन्स जो अमृत, जो मृत नहीं है, बाकी सारे रस क्या है, मृत है, टेस्टलेस है, सड़ने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, लेकिन जो भक्ति का जो रस है वो अमृत है और वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है और आनंद देने वाला है। तो जो हरिदास ठाकुर हैं उनका मुख तो चंद्रमा के समान था और सारे लोग उनको देखकर वो जो कैदी है वो आकर्षित हो जाते हैं। और उनको प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करने से उनके हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है सब लोगों के हृदय में। अभी वो बिल्कुल सरचार्ज हो गया था, वो जेल का जो माहौल है, सब लोग कृष्ण के प्रति प्रेम के विकारों को प्रकट कर रहे थे। हाँ, कोई व्यक्ति रोमांचित हो रहा था, किसी के रोंगटे खड़े हो रहे थे, कोई कृष्ण कृष्ण कहते जा रहा था। तो हरिदास ठाकुर को प्रणाम करने मात्र से, ये शब्द से वैष्णव को प्रणाम करने मात्र से क्या है, हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का विकास होता है, इसे सीख सकते हैं। इसलिए तो हम रोज सारे वैष्णव को प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरिदास ठाकुर को प्रणाम करने मात्र से ये सारे कैदियों के हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय हो गया, और फिर हरिदास ठाकुर उन सबको आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कहते हैं कि थाक थाक एखन आचय जैन रूपे गुप्त आशीर्वाद करी हासे न कौतुके। कहते कि बहुत अच्छा, इधर ही रहो आप सब लोग, कहा रहो, इधर में ही रहो, जेल में। आचय जैन रूपे, जिस रूप में हो इधर ही ऐसे ही रहो, थाक एखन स्थाने। और गुप्त, तो ये आशीर्वाद उनका गुप्त था, और ये बोल के हरिदास ठाकुर हंसने लगे। तो सबने ये आशीर्वाद सुना तो सब लोग नाराज हो गए, अनहैप्पी। उन्होंने कहा ये क्या आशीर्वाद है हरिदास ठाकुर ने हमें, कि हम तो जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें तो कुछ और आशीर्वाद चाहिए, लेकिन ये तो और ही आशीर्वाद दे रहे कि इधर ही रहो, जेल में ही रहो। तो इस प्रकार से उनको थोड़ा बुरा लगा, और हरिदास ठाकुर ने उनके चेहरे को देखा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार कर रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर ने पता चला कि मैंने जो आशीर्वाद दिया है उसको ये लोग सुन के दुखी हो गए हैं, निराश हो गए हैं, हतोत्साहित हो गए हैं। तो वो फिर कहने लगे, वो उस आशीर्वाद को समझाने लगे कि मैंने क्या आशीर्वाद दिया है आपको। तो कहने लगे कि इस समय आप जिस स्थिति में हो वैसे ही रहो, मीन्स कि अभी जब आप मेरे सामने हो और अभी आप सब लोग कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हो, कृष्ण में आपका मन लगा हुआ है, कृष्ण के नामों का आप कीर्तन कर रहे हो और कृष्ण के नामों का चिंतन कर रहे हो, और कृष्ण को बहुत काकुवाद मीन्स बहुत विनम्र होकर रोते हुए आप कृष्ण को पुकार रहे हो, तो इसी मूड में, इसी भावना में आप सब लोग रहो, ये उनका आशीर्वाद था। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर उन सबको आशीर्वाद देते हैं इस प्रकार का। और वो कहते हैं कि क्योंकि आप बाहर जाओगे भौतिक जगत में, तो आप फिर आकर्षित हो जाओगे, अपने पुत्र है, परिजन है, असत संग है, इससे क्या होगा, आपको कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। इस प्रकार से काफी सुंदर इंस्ट्रक्शन हरिदास ठाकुर ने दी है, तो मैं जस्ट वो दो तीन इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन केवल उस बंदियों के लिए नहीं है वो जेल में है, ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए है, हमारे लिए। क्यों है हमारे लिए, क्योंकि हम भी कैदी हैं, हम भूल ही गए हैं, माया कारागार, माया सृजे कारागार। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो जीव भगवान से द्रोह करते हैं उनके लिए माया कारागार बनाती है, जेल बनाती है, वे भौतिक जगत है। तो हम भी कैदी हैं, और हमें भी वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो इंस्ट्रक्शन हरिदास ठाकुर ने बंदी जो कैदी थे उनको दी थे। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कुछ चार पांच इंस्ट्रक्शंस को मैं पढ़ता हूँ। तो वो कहते हैं कि आर बार गिया विषय इते प्रवर्तिले सबे यहाँ पासरी बे गेले दुष्ट मेले। तो वो कहते हैं कि आप यहाँ से जाने के बाद जेल से विषयों में प्रवृत्त होने के कारण आप दुष्टों का संग करोगे, असत संग करोगे बाहर जाके, और इस कारण से आप कृष्ण का कीर्तन भूल जाओगे। विषय था कि ते कृष्ण प्रेम नाई हाय। यदि विषयों में यदि मन लगने लगा, विषयों में अब विषयों के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने लगा तो फिर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होगा। दोनों में से एक चीज होगी, या तो भौतिक विषयों के प्रति प्रेम होगा, यदि वहां प्रेम है तो फिर यहाँ नहीं होगा। हाँ, जैसे आपको नदी को पार करना है तो आप दो नाव के ऊपर पाव रख के नहीं रखते हो पार करने के, ओ मैं इस नाव में एक पाव रखता हूँ उस नाव में, नहीं नहीं पार हो सकते, अब बीच में गिर जाएंगे। तो उसी प्रकार से है कि विषय दूरे कृष्ण जानी हनी छय, और जो विषयों में आसक्त है, विषयों के प्रति जिसका मन लगा है, कृष्ण ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत दूर है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर इंस्ट्रक्शन देते हैं, विषय अविष्ट मन बड़ा ही जंजाल, जिसका मन विषय में अविष्ट हो जाता है, मग्न हो जाता है, तो वो उसके जीवन में बहुत अधिक उलझन आती है, बहुत अधिक कष्टमय स्थिति आती है। स्त्री पुत्र माया जाल ए सब काल, और जो स्त्री है, पुत्र है, परिजन है, ये क्या है, माया का जाल है, नेट है। आजकल तो कई नेट निकले, उसमें से एक इंटरनेट है। हाँ, नेट का मतलब क्या है, जाल, और इंटरनेट ऐसी चीज है, हाँ, कि आप बैठो और आप उस नेट में जाते रहोगे, घंटों बीत जाएंगे लेकिन उस नेट से बाहर आने की इच्छा नहीं होगी। हाँ, तो इंटरनेट, हाँ, आंतरिक और अंदर, और अंदर नेट। तो इस प्रकार के ये कठिन है, कहते कि जो ये स्त्री है, पुरुष है, पुत्र है, परिजन है, संबंधी है, सखागन है, ये सब माया का जाल है। इनके संग में रहोगे तो फिर आप कृष्ण से दूर हो जाओगे, और ये काल है, काल। दैवे कोन भाग्यवान साधु संग पाए, विषय आवेश छाड़े कृष्ण रे भजे। कि कहते हैं कि कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है, सुकृतिशाली, जो जिसको साधुओं का संग मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, और फिर वो इन विषयों को त्यागने में समर्थ हो जाता है और कृष्ण का स्मरण करता है। तो जो फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा है, कृष्ण को जो भूलते हैं हम, तो इसके लिए दवाई क्या है, साधुओं का संग करो, क्योंकि ये मेडिसिन है साधु संग। हम कृष्ण को भूलते हैं तो उसकी दवाई है साधुओं के संग में आ जाओ। आपको न चाहते हुए भी कृष्ण का स्मरण करना पड़ेगा, और हो ही जाता है साधुओं के संग में। इसलिए वो हरिदास ठाकुर इस बात को कहते हैं, और वो कहते हैं कि बंदी था कहे ना आशीर्वाद ना ही करी, कि मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं कि आप लोग बंदी रहो, मैंने आशीर्वाद क्या दिया है, विषय पसार अहर्निश बल हरि, कि आप ये विषयों को भूलो, भौतिक विषयों में मन को मत लगाओ, उसको भूलो, और अहर्निश दिन रात कृष्ण के कीर्तन में लगो, जिस प्रकार से अभी मेरे सामने आप सबका मन कृष्ण में है, हाँ इसी रूप में रहो, आप कहते हैं। तो उनको लगा कि जेल में ही रहो, हाँ, लेकिन ये आत्मा के धरातल पर हरिदास ठाकुर उनको ये शिक्षा दे रहे थे। और फिर हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा तो स्वाभाविक रूप से सारे जीवों के प्रति दया का भाव है, और उन्होंने कहा कृष्ण दृढ़ मति हो तोमा सभाकार, कि कृष्ण के प्रति आपका मति, हाँ, क्या हो, मन दृढ़ हो जाओ। इस प्रकार से वो कहते हैं कि दो तीन दिन में आप चिंता मत करो, और आप सब लोग इस बंदीमय जीवन से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से हरिदास उन सब जो कैदी थे उनको ये शिक्षा देते हैं और उनको ये आशीर्वाद देते हैं। तो हम भी सीख सकते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक जगत के जेल में हैं, और उनका यह आशीर्वाद या उनके जो इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए भी लागू होते हैं। और मेन इंस्ट्रक्शन क्या है, कि हम सदा हरि नाम का उच्चारण करें, असत संग से दूर रहें, विषयों से अपने आप को दूर रखें। तो स्वाभाविक रूप से फिर हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, या कृष्ण का स्मरण हो पाएगा, और फिर इस भौतिक जंजाल से हम मुक्त हो जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर को फिर दूसरे तीसरे दिन यवन के सामने ले आए, जो काजी था, जो मेन जो राजा था, उनके सामने हरिदास ठाकुर को लाया गया, और उन्होंने कहा कि क्यों आप ये हिंदुओं के भगवान का नाम क्यों जप करते हो। कहते कि तुम दूषित हो गए हो, क्योंकि हम लोग इतने पवित्र हैं, कि हिंदुओं को देख के हम भात नहीं खाते, राइस नहीं खाते, अशुद्ध हो जाते हैं। तो कहते कि तुम क्यों ये हिंदुओं के भगवान का नाम जप करते हो, और तुम ऐसा करोगे तो परलोक में भी तुम जा नहीं पाओगे। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर को वो कहते हैं कि तुम तो बहुत घृणित हो गए हो, दूषित हो गए हो, तुमने अपराध किए हैं, तो पवित्र हो सकते हो यदि कुरान का जो अंश है कलमा उसको पढ़ो, तुम पवित्र हो जाओगे। जैसे हिंदुओं में कुछ प्रायश्चित होते हैं, है ना, कुछ पाप कर लिया तो आप ये करो तो आप शुद्ध हो जाओगे। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी कहा, तो फिर हरिदास ठाकुर हंसने लगे। हाँ, कहते कि देखो ये विष्णु माया, कहते कि आपका जो पुराने आपका जो कुरान और हिंदुओं का पुराण, हाँ, ये दोनों सही है, हाँ, एक ही चीज की शिक्षा देते हैं। और उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मैं एक भगवत नाम का उच्चारण छोड़ूंगा नहीं। खंड खंड हय देह जाय जदि प्राण, कहते मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, जाय जदि प्राण, मेरा प्राण चला जाए, तबु तना हमें छाड़ने छाड़ी वदने हरि नाम, फिर भी मैं अपने मुख से भगवान का नाम लेना छोड़ूंगा नहीं। तो इस प्रकार से कितना डिटर्मिनेशन है, हाँ, तो ये है हरि नाम के प्रति डिटर्मिनेशन या अटैचमेंट, आसक्ति, तीव्र आसक्ति, कि चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, हाँ, सूर्य पश्चिम से उदित हो जाए, हाँ, तो भी मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, चाहे जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाए, विपदाएं क्यों ना आ जाए। तो भक्त इसी क्योंकि भक्त जानता है कि मेरे जीवन में कोई चीज धन है तो वो क्या है, हरि नाम। गोलोक एरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये इस जगत का नहीं है, इम्पोर्टेड वस्तु है। हम सब जैसे आईपॉड यूज करते तो इम्पोर्टेड है, तो फिर घड़ी यूज करते तो ये आजकल तो नहीं इतना ही, लेकिन कुछ सालों पहले इम्पोर्टेड वस्तुओं को रखना एक स्टेटस था घर में, कोई भी चीज और लोगों को दिखाना। तो भगवान ने सोचा मैं भी इम्पोर्ट करता हूँ, उन्होंने क्या चीज इम्पोर्ट की, हरि नाम। और यहाँ से नहीं कि अमेरिका से या कहाँ से, गोलोक से, सीधा गोलोक एरा प्रेम धन, गोलोक से उन्होंने इम्पोर्ट करके लाए, कहा कि इम्पोर्टेड चीज यूज करो, हरि नाम यूज करना है तो वो इम्पोर्टेड होना चाहिए। और वो है हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे,
तबु आमी वदने छाड़ी हरि नाम, चाहे मेरे जीवन में विपदाएं आ जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, कष्ट आ जाए, फिर भी मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे आचार्य हुए हैं जिनका इतना अनुराग हरि नाम के प्रति। तो हरिदास ठाकुर को हम चैंटिंग से पहले भी प्रार्थना करते हैं, तो आप देखेंगे कि चैंटिंग आपका जंप करने लगेगा। हाँ, तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य है, और कोई व्यक्ति हरि नाम सिंसियरली चांट करना चाहता है तो वो इच्छा देखकर हरिदास ठाकुर इसके ऊपर कृपा करते हैं और वो स्ट्रेंथ देते हैं चैंटिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि क्या इसका इलाज किया जाए, क्योंकि ये तो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो काजी ने कहा कि इसको 22 बाजारों में पीटा जाए, हाँ, कोड़े मारे जाए चाबुक से। तो फिर हरिदास ठाकुर को ले जाते हैं वो जो मारने वाले लोग हैं, और जीवित नहीं रहना चाहिए, ये जीवित रहेगा तो हम समझेंगे कि ये सच्चा साधु है, मरने तक इसको मारो 22 बाजारों में। तो हरिदास ठाकुर को वो ले जाते हैं और बहुत अधिक मारते हैं, 22 मार्केट प्लेसेस, जैसे आप देखो सेंट्रल मार्केट है लाजपत नगर का, फिर यम ब्लॉक मार्केट है जीके क्लास, तो कैनॉट प्लेस का एक मार्केट, तो ऐसे कितनी मार्केट में ले गए थे, 22 मार्केट्स में, और सारे लोगों के सामने, क्योंकि काजी ने कहा कि ये हरि नाम को लेते रहता है ये सुधरेगा नहीं, और ये दूसरों को भी सिखा रहा है, दूसरे यवन भी हमारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको दंड देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हरि नाम का उच्चारण करने की। तो फिर जाते और उनको मारते हैं बहुत अधिक। तो पहले ऐसे किसी को दंड दिया जाता था तो वो 2 या 3 मार्केट में जाते जाते शरीर छोड़ देता था, लेकिन हरिदास ठाकुर के साथ ऐसे नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर बहुत अधिक उनको जो लोग है वो मारने वाले उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर के ऊपर जो कष्ट है वो उनको महसूस नहीं हो रहा था। जैसे प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद महाराज को कितने प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन भगवत कृपा के कारण उनको वो अनुभव नहीं हुए। तो उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर को भी, चाहे वो लोग मार रहे थे, वो लोग मार मार के थक गए, उनके शरीर में पसीना आने लगा, वो खुद मरने लगे और वो डरने लगे, क्योंकि काजी ने कहा था यदि ये जीवित रहेगा तो आपको परिवार के साथ आपके वंश पूर्व सबको जला देंगे, मार डालेंगे। तो ये पूरा, क्योंकि या तो हमें मरना है यदि इनको नहीं मारेंगे, तो हरिदास ठाकुर को मारते ही जा रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे, उनके मुख से हर समय भगवत नाम निकल रहा था, और वो इतने इतने अधिक दयालु थे कि जो लोग उनको मार रहे हैं उनके उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि आप हे कृष्ण इनको इस अपराध से बचाओ, क्योंकि भक्त को कोई द्वेष करता है या उनको प्रहार करता है तो भगवान बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, भगवान उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। तो वैसे ही जब हरिदास ठाकुर को मारा गया तो वो जो लोग मार रहे थे, हरिदास ठाकुर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि इनको आप क्षमा कर दो, ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो लोग प्रार्थना करने लगे हरिदास ठाकुर को कि देखो आप नहीं मरोगे तो फिर हमें मरना पड़ेगा, आप कुछ करो। तो कहते ठीक, हरिदास ठाकुर कहते ठीक। तो हरिदास ठाकुर ध्यान की मुद्रा में बैठते और अपने आप को ऐसे लेट जाते हैं और पूरी तरह से मूर्छित हो गए थे, ऐसे लग रहा था कि उन्होंने शरीर त्याग दिया है। तो उनको श्रृंखलाओं से बंधा हुआ था, चैन से उनको ले जाते हैं उस राजा के सामने और कहते कि काजी वगैरह को दिखाते कि देखो इनको हमने मार डाला है। तो वो जो मुलुक पति है वो कहता है कि इसको दफना जाए। तो काजी कहते कि नहीं, क्योंकि इसको अच्छी गति मिलेगी, इसको जलाएंगे या फिर जमीन के नीचे जैसे कब्र बनाएंगे मुस्लिम के जैसे, तो इसको अच्छी गति मिलेगी, इसको हम क्या करेंगे, अच्छी गति नहीं मिलनी चाहिए, इसको गंगा में फेंक देंगे। तो फिर ले जाते हैं और गंगा में उनको फेंक देते हैं उनके शरीर को। तो हरिदास ठाकुर पानी के नीचे जाते हैं और कुछ समय आगे जाने के बाद फिर से फ्रेश नव यौवन के समान बाहर निकल आते हैं और फिर से कीर्तन करने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही बाहर आते हर कोई आश्चर्यचकित हो रहा था, क्योंकि इनको जब मारा जा रहा था तो फुलिया ग्राम के जो लोग है उस एरिया के, वो उन मारने वालों को कहा करते थे कि हम आपको इतना धन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप उनको छोड़ो। इस प्रकार से उन सब लोगों का प्रेम था उनके प्रति। तो हरिदास ठाकुर जैसे पानी से बाहर आए तो सारे लोग उनका स्वागत करने लगे, मिलने लगे, प्रणाम करने लगे, वो जान गए। और जैसे ही उस मुलुकपति जो राजा था उनको पता चला और काजी को वगैरह पता चला, सब डर गए और ये जाकर उनसे मिला और वो उन सब ने हरिदास ठाकुर के चरणों में लोटांगन किया, मतलब उनके चरणों में गिर पड़े, उनके चरणों को प्रणाम किया काजी ने, जो उनके प्रति इतना द्वेष और ईर्ष्या करता था। तो फिर हरिदास ठाकुर ने उनको क्षमा कर दिया और उन लोगों ने कहा कि आप मुक्त हो, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, आप हरि नाम का जितना चाहे उच्चारण कर सकते हो, किसी भी स्थान में रह सकते हो, हमारा पूरा सपोर्ट है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने बाद में कहा, और ये उनका विनम्रता के वाक्य थे कि मुझे इतना दंड इसलिए मिला क्योंकि मैंने विष्णु निंदा सुनी थी, कृष्ण की निंदा मैंने सुनी थी, उसका ये फल है कि भगवान ने मुझे उचित दंड दिया है। तो भक्त इस प्रकार से सोचता है, उसके जीवन में विपदाएं आती हैं तो वो अपने आप को सोचता है कि ये मेरे कर्मों का ही रिजल्ट है, मुझे बल्कि बहुत अधिक कष्ट मिलने वाला मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा इतनी हुई कि मुझे बहुत कम कष्ट मिल रहा है, कष्ट मिला है। ऐसे नहीं कि वो भगवान को दोष देने लगता है, भौतिक जगत में ये पाया जाता है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है हमारे साथ तो हम उंगली सीधा उठाते हैं, कुछ भी चीज हो जाए। हाँ, सर्व कारण कारणम कृष्ण। हाँ, फिर त्याग देते, भक्ति भी छोड़ के जाते हैं भक्त लोग भी। हाँ, क्योंकि वो सही ढंग से सीखते नहीं या अनुभव नहीं करते जो सिद्धांत है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का ये जीवन है, आज उनके इस लीला से हम सीखते हैं कि कितना गहन अनुराग हरिदास ठाकुर को था भगवान के नाम के प्रति। तो ऐसा अनुराग हमें हमारे हृदय में भी विकसित हो जाना चाहिए। हाँ, वो कैसे होगा, यदि हम वैष्णव के संग में हरिनाम का उच्चारण करेंगे और हरिदास ठाकुर जैसे महान पूर्ववर्ती आचार्य को हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, तो ये संभव हो सकता है। श्रील हरिदास ठाकुर के, श्रील प्रभुपाद के, साई गौर प्रेमानंदे। तो फिर आगे हम चर्चा करेंगे बाद में हरिदास ठाकुर की, वो बहुत विस्तार से है जीवन चरित्र। मुझे भी निकलना, कोई प्रश्न है कि मैं प्रश्न पूछूं? ज्यादा नहीं हुआ थोड़ा, लेकिन ज्यादा डिस्कशन कुरान और कुरान का हुआ है चैतन्य चरितमृत में, काजी के साथ और चैतन्य महाप्रभु का, दोनों का संवाद तो उसमें है थोड़ा विस्तार से। जब काजी ने नवदीप में मृदंग तोड़ दिए थे कि आज से कीर्तन नहीं होगा, तो महाप्रभु को कहा कि चलो आज चलते हरि नाम लेके। सारे भक्त हाँ गुस्से में गए, तो फिर हरिदास वो काजी डर के अंदर ही रूम में बैठा रहा, बाहर ही नहीं आ रहा था।
ये काजी वो डिफरेंट,
हाँ डिफरेंट, क्योंकि महाप्रभु अभी अवतरित नहीं हुए थे। हाँ, ये अवतरित नहीं हुए थे, बाद में अवतरित होते हैं हरिदास ठाकुर की शुरुआत की लीला है, क्योंकि उस समय तो मुस्लिमों का राज्य था पूरे बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में, और तो इसलिए वैष्णव लोग या फिर हिंदू लोग थोड़ा डर डर के कार्य करते थे भगवत भक्ति का, और ये लोग कन्वर्ट कर देते थे, पानी फेंक देंगे आप मुस्लिम बन जाओगे, ऐसे ऐसे होता था। और उस समय सभी ब्राह्मण लोग भी ऐसे ही थे, तो इस प्रकार से उस समय कन्वर्ट करना इजी था, पानी फेंको कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन आजकल नहीं, आज बहुत कठिन है।
कुलिया ग्राम को बोलते हैं अपराध निजन ग्राम?
नहीं, कुलिया है
वो अलग,
कुलिया ग्राम, कुलिया जहाँ नवदीप है ना अभी, वो कुलिया स्थान है। नवदीप इधर इस किनारे था जहाँ अभी मायापुर है, वो कुलिया ग्राम है, कुलिया अपराध भंजन स्थान है कि अपराध करते हो वहाँ जाके क्षमा याचना करो सारे अपराध। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ कुछ जो अपराधी थे उनको क्षमा किया था, और जिन्होंने श्रीवास पंडित के प्रति अपराध किया था, गोपाल चपल थे, हरिदास ठाकुर ने के प्रति तो गोपाल चक्रवर्ती ने किया, तो गोपाल चपल थे, जब वो अंदर कीर्तन करते थे तो बाहर देवी पूजा का सारा सामान उन्होंने रखा था, हरिदास ठाकुर देखो 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 मैं देवी का पूजक हूँ देखो। हाँ, इस प्रकार से वो द्वेषित थे, पाषाणी लोग जो वैष्णव से ईर्ष्या करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो फिर उनको तो कुष्ठ रोग हो गया था, और चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके आए तब वो मिला, कहा प्लीज मुझे क्षमा करो, कहते नहीं आप उनके पास जाओ और वो आपको क्षमा करेंगे। कौन? श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित के पास जाते हैं वो क्षमा कर देते हैं।
जैसे आप बताएं कि जो पूरा मैटेरियल लेता है उनका मन कृष्ण नहीं रहता है, तो हमारा स्थिति क्या है? हम उधर के
तटस्थ शक्ति है, तो हमारे जीवन में भी तटस्थता आता है हर समय, तटस्थ स्थिति में नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को, हम तो प्रोसेस में है। हाँ, और ये क्योंकि जैसे हम हॉस्पिटल में भी हमें यह पता चला है कि मैं बीमार हूँ, लोगों को यही पता नहीं कि मैं बीमार भी हूँ। भौतिक जगत में क्या है, उनको यह भी पता नहीं कि मैं बीमार हूँ। मटेरियल भौतिक बीमारी है, भव रोग, बीमारी का नाम क्या है, भव रोग। तो इसलिए हॉस्पिटल में जाने का प्रश्न ही नहीं है। हाँ, लेकिन हमें पता चला कि बीमार हो, भव रोग, और क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कई रोग है, भव रोग, और फिर हमें एडमिशन ले, तो अभी फिर ठीक हो रहे हैं, प्रोसेस में है। तो ये विषय भी, विषयों से भी हम दूर हो जाएंगे जब हम इस प्रोसेस में अच्छी तरह से लगेंगे, और धीरे धीरे फास्ट भी हो सकता है, तीव्रता, जिस भक्त की तीव्रता कितनी है ना। इसलिए भागवत में कहते तीव्रे न भक्ति योगे न एजता पुरुषा परम, चाहे अकाम व सर्व काम, चाहे अकाम जीरो मटेरियल डिजायर्स हो या कोई इच्छा नहीं हो भौतिक, और अकाम सर्व काम, पूरे विषयों को भोगने की सारी इच्छाओं से गिर पड़ा है। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि, चाहे मोक्ष की प्राप्ति करने की कामना क्यों ना हो, भगवान में लीन होने की, लेकिन क्या करो, तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषा परम, कि जो परम पुरुष है कृष्ण, उनके भक्ति में तीव्रता से लगो, तो फिर ये जाएंगे विषयों के प्रति जो लालसा है। और प्रार्थना करते रहने चाहिए, जैसे विष्णु आचार्य ने कहा है, विषयते प्रीति जबे आछे अमार, से मत प्रीति हाओ चरणे तुमार। भक्तिनाथ ठाकुर की इतनी अद्भुत प्रार्थना है, प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। तो उस श्लोक का अनुवाद है, उन्होंने गीत लिखा, न धनम न जन्म न सुंदरी, इसके ऊपर गीत, पूरे शिक्षाष्टकम के ऊपर उन्होंने गीत लिखा है, और पूरे शिक्षाष्टकम इतना इजी कर दिया है कि आप गा सकते हो एक एक श्लोक पूरा ऐसे लंबा लंबा। तो कहते कि प्रभु तव पद युगे, कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। क्या निवेदन, नाही मागी देह सुख विषय सुख, देह को क्या चाहिए, सेंस एंजॉयमेंट चाहिए, बॉडी में इंद्रिया है तो बॉडी को क्या चाहिए, सेंस एंजॉयमेंट। नाही मागे देह सुख विद्या धन जान, इस प्रकार से वो कहते हैं, विषय ते प्रति जबे आछे अमार, और विषयों के प्रति जितना प्रेम है मुझे, से मत प्रति हो चरण है तुम्हारो, उतनी ही प्रति आपके चरणों में मुझे हो जाए। तो ये प्रार्थना भी हमें करनी चाहिए भगवान को, कि विषयों से मुझे मुक्त करो। इस प्रकार से ये संभव है, प्रोसेस में हम लगे रहेंगे और श्रवण करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है हियरिंग, हियरिंग को आप त्यागिए मत, अटेंटिव हियरिंग करिए, जहाँ भी मौका मिले श्रवण करिए, भागवत में है जो भी क्लासेस है, क्योंकि हियरिंग हमारा इतना स्ट्रांग फाउंडेशन है कि सब चीज़ों को सुधार देता है वो। जैसे आप ढीले हो गए, सोचो हम भक्ति में ढीले हो जाते हैं एक वीक के लिए, और तुरंत कोई ऐसा अद्भुत क्लास देता है भागवत में, पूरा सर चढ़, क्यों, फिर से हम, ये हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मरे हुए व्यक्ति को भी जगा दे सकती है ये हियरिंग, नचा देती है। तो हियरिंग से सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, जैसे हम हरि नाम सुनते हैं तो कृष्ण के बारे में, भगवत भक्ति के बारे में, भक्ति के विज्ञान के बारे में, भक्तों के जीवन के बारे में और क्वालिटीज के बारे में, ये सब श्रवण ही करते हैं हम, तो फिर हमारी डिजायर होती है कि हाँ, मुझे उन गुणों को विकास करना है, मुझे कृष्ण भावना में आगे बढ़ना है, विषयों से मुक्त होना है, ये सब डिटर्मिनेशन आता है। तो ये सब कैसे आता है, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, इसलिए इन चीज़ों में हम लगे रहें, और फिर हमारा प्रयास देखते हैं तो भगवान कृपा करते हैं और फिर हमें मुक्त करते हैं उन चीजों से। ठीक, हरिनाम संकीर्तन की।